ரிணமோ அரிஹந்தானம், ரிணமோ சித்தானம் நமோ ஆரியானம், ரிணமோ உபத்யாயானம் நமோ சர்வஸ்வாமம். பஞ்சரணமோ யாரோ சர்வ பாவ பிரணாசனம், மங்களானம் சர்வேசம் பரமம் பூதம். சத்தாரி மங்களம், அரிஹந்தா மங்களம், சித்தா மங்களம், சாகு மங்களம், கேவலி பணத்தொடும் மங்களம். சத்தாரி லோகுத்துமா, அரிஹந்தா லோகுத்துமா, சித்தா லோகுத்துமா, சாகு லோகுத்துமா, கேவலி பணத்தொடும் லோகுத்துமோ. சத்தாரி சரணம் பவத்யாமி, அரிஹந்தே சரணம் பவத்யாமி, சித்தே சரணம் பவத்யாமி, சாகு சரணம் பவத்யாமி, கேவலி பணத்தம் தம்மம் சரணம் பவத்யாமி. विगत कई दिनों से बारह भावनाओं के संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चल रही है, जिसमें भावनाओं में चिंतन प्रमुख है। हमारा चिंतन कैसा चले, तो कैसा चिंतन अपने को लाइफ में करना चाहिए, बस पूरा उसका वर्णन किया है। इन बारह भावनाओं में, द्वादश अनुप्रेक्षाओं में प्रारंभ की जो छह अनुप्रेक्षाएं हैं, वैराग्य से संबंध रखने वाली है, और अंत की जो भावनाएं हैं, ये सभी संबंध रखने वाली है तत्व से संबंध रखने वाली है। तो प्रारंभिक छह भावनाओं की चर्चा तो हम कर चुके थे, है ना। अब अपने को यहाँ चर्चा करनी है वैराग्य संबंधी भावना के बाद तत्व संबंधी चर्चा। इनके क्रम के संदर्भ में भी हम यहाँ बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा वो पूरा का पूरा प्रसंग, कि जीव की किस प्रकार की भावनाएं होती है और कैसे तर्क करता जाता है। एक तर्क करता है और उसके जवाब में दूसरी भावना खड़ी हो जाती है। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ये चीज आगे बढ़ती चली गई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जबरन कुछ किया हो। और जितने संत हुए हैं, जितने साधुओं ने, जितने महात्माओं ने बारह भावनाएं लिखी है, उन सबने इसी क्रम का प्रयोग किया है। मैं पुनः एक मिनट में उसी बात को दोहराऊं, जिससे आपको याद भी हो जाएगी। हम सभी ये चाहते हैं कि जो मिला है वो बना रहे। तो सबसे पहली इच्छा है, आपको क्या चाहिए? तो हम ये कहते हैं कि साहब ये चीज हमारे को चाहिए, तो हमने कहा ये तो मिल नहीं सकता, और बतलाओ और क्या चाहिए। फिलहाल ऐसा हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो और बतला तुम्हारे को क्या चाहिए। तो हमने कई बातें कही, मांगी, और सामने वाले ने मना कर दिया कि नहीं मिल नहीं सकता, और फिर भी हमसे पूछा कि बताओ क्या चाहिए। तो हमने कहा भैया कुछ नहीं चाहिए हमारे को, जो है कम से कम वही बना रहे। क्या कहेंगे हम, क्या चाहेंगे, क्योंकि जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है। तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन जो मिल गया है वो कम से कम मेंटेन रहे, सरकार नहीं रहेगा। इसलिए आपकी ये अपेक्षा ठीक नहीं है, आप दुखों के बीज बो रहे हैं यदि ऐसा चिंतन करते हैं। तो पहले से ये विचार कीजिए चला जाएगा। जब कभी हम पहले से ही इस बात का विचार करके रखते हैं कि जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग नियम से होगा, तो फिर वियोग हो जाने पर दुख भी नहीं होता। हम जानते हैं ये तो होना ही था, कई कई तरह से सोच सकता है ये व्यक्ति उस परिस्थिति के संदर्भ में। मुझे याद आती है वो निर्मोही नगरी के राजा की घटना, सुनी है आपने कभी? नहीं सुनी आपने? निर्मोही नगरी में एक राजा रहता था जिसका नाम था निर्मोही। उसका एक बेटा था, आपने सही लगता है? नहीं सुनी। वो जंगल में गया और रास्ता भटक गया। नॉर्मली ऐसा होता है सब कहानियों में, कोई भी जंगल में जाता है तो रास्ता भटक जाता है। रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, और जंगल में उसे एक कुटिया दिखाई दी साधु की। लगा शायद ये कोई रास्ता जानते होंगे, उनके पास में चला गया। साधु महात्मा ने पूछा कि पहले तुम अपना परिचय दो, तुम हो कौन? तो कहा मैं निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का पुत्र निर्मोही हूँ। हो गया, साधु को बड़ा आश्चर्य लगा कि तुम नाम के ही निर्मोही हो कि वास्तव में निर्मोही हो। साहब हम तो सब निर्मोही हैं। नगर का रास्ता पूछा, साधु ने मना कर दिया। साधु ने कहा नहीं, कम से कम एक दिन तुम्हें यहाँ रुकना होगा, और फिर मैं यदि तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई हुई तो मैं नगर के रास्ते की बात सोचूंगा, तुम यहीं ठहरो मैं आता हूँ। साधु चला गया नगर की तरफ। नगर में जैसे ही प्रवेश किया तो वहां कुछ जो लोग इधर उधर घूम रहे थे, प्रजा वहां की जनता, उनमें से कहा कुछ लोगों से कि भैया तुम्हारे जो राजकुमार थे ना, छोटे राजकुमार, वे राजकुमार जंगल में गए थे और उनको शेर फाड़ के खा गया। बहुत एक्साइटेड होकर के उन्होंने ये सूचना दी। नगर के लोगों ने कहा अरे महात्मा जी, आप इसमें आकुलित व्याकुलित क्यों हो रहे हैं? मौत हुई है उनकी, शेर ने खाया है उनको, और आप ऐसे आकुलित हो रहे हैं जैसे शेर आपके पीछे पड़ा हो। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, साधु महात्मा को, कि कैसे लोग हैं। साधु महात्मा ने भी सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, दुनिया है, पता नहीं राजा कैसा हो, राजकुमार कैसा हो, जन सामान्य को क्या उनके प्रति अनुराग होगा। महल की तरफ चलते हैं। जब महल की तरफ चलने लगे तो वहां कुछ दासियां पूजन के लिए, भक्ति के लिए फूल तोड़ करके पास में लेकर के जा रही थी, हाथ में फूल से आराधना के लिए जा रही थी। तो महात्मा जी ने उन दासियों से कहा कि तुम्हारे छोटे राजकुमार, वही घटना दोहराई। तो महात्मा जी क्या हो गया इसमें, ये तो हम रोज देखते हैं, जो फूल हम सुबह तोड़ते हैं वो शाम तक मुरझा जाते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। साधु महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे लोग हैं। तो चलो किसी और से पूछना चाहिए, और आगे चल के उन्होंने पूछा उसके बड़े भाई से कि तुम्हारे भाई को ऐसे ऐसे शेर खा गया, और मैं अभी अभी जंगल से ही आ रहा हूँ, बहुत बुरा हुआ उसके साथ में। तो बड़े भाई ने जवाब दिया अरे महात्मा जी, एक वृक्ष के ऊपर दो आम लगे थे, एक आम गिर गया और गिरने वाला दूसरे से कह रहा है कि थोड़ी देर में तुझे भी गिर जाना है, तो कौन से आश्चर्य की बात है। यदि उसका स्वर्गवास हो गया है तो आकुलता की बात नहीं है, ये बात तो समझदारी की है कि उसके चले जाने से शिक्षा लेनी चाहिए, आज वो चला गया और कल हमें चले जाना है। हो सकता है भाई था, भाई भाई राज्य के लिए, संपत्ति के लिए, न मालूम कैसा सोचते हो, चलो हमें आगे चलना चाहिए, पत्नी से जाके बात करनी चाहिए, उसके मन में तो बहुत अनुराग होगा ही होगा निश्चित तौर पर। तो महात्मा जी ने पत्नी से जाकर के कहा कि अरे तुम विधवा हो गई, अब तुम्हारा जीवन अकेला बीतेगा, अब कोई नहीं रहा तुम्हारे लिए सहारा देने वाला, ऐसी ऐसी घटना वहां घट गई है। तो पत्नी ने कहा महात्मा जी शांत रहिए, ज्यादा आप परेशान है हो में, ये तो उस दिन से लकी था जिस दिन हमारा विवाह हुआ था, सभी ये बात निश्चित थी कि दोनों में से एक को पहले चले जाना है, संयोग से वे पहले चले गए नहीं तो मैं पहले चले जाती, दो में से एक को तो पहले जाना ही है ना, आकुलित व्याकुलित होने से क्या होगा, वे चले गए हैं, पहला नंबर उनका लग गया, पहला मेरा भी लग सकता था। राजा के पास ले चल के बात करनी चाहिए। राजा ने भी इसी प्रकार का जवाब दिया, अरे जिस दिन मैंने उसको पहली बार गोद में उठाया था उस दिन से उसकी आयु प्रति समय खत्म होती जा रही थी। बोले माँ से जाकर के पूछे, माँ ने भी इसी प्रकार का जवाब दिया, अरे पिछले भव से जितनी आयु लेकर के आया था उस आयु में एक समय भी बढ़ाया नहीं जा सकता है, आज उसकी आयु पूरी हो गई, जब जिसकी आयु पूरी होनी हो उस समय वो छोड़ करके चला जाता है। फिर कैसे चिंतन होते हैं लोगों के, किस तरह का सोचते हैं। महात्मा को लगा वास्तव में यहाँ तो नगर में सब निर्मोही है, वापस लौटना चाहिए हमारे को, लेकिन वो राजकुमार कहता था मैं भी निर्मोही हूँ, उसकी भी परीक्षा ले ली है, उससे जाकर के कहा कि मैं अभी नगर से आ रहा हूँ, नगर में आग लग गई और आग उठी थी महल से, और सब लोग महल के जल करके भस्म हो गए। बहुत ज्यादा ऐसे आकुलित व्याकुलित होते हुए, टेंशन करते हुए, घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए ये सारी की सारी घटना महात्मा जी ने उनको सुनाई। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ये सब स्वतंत्र व्यवस्था है, ये कर्मों के उदय प्रमाण व्यवस्था सबको मिलती है, इसमें आकुलित होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग स्थानों से लोग आकर के एक स्थान पर रुकते हैं, अपना अपना काल व्यतीत करके चले जाते हैं, ऐसा ही सृष्टि का स्वरूप है। वास्तव में ऐसे निर्मोही लोगों को देखकर महात्मा जी ने भी शिक्षा ले ली कि वास्तव में ऐसा भी चिंतन हो सकता है। पूछ लेगा नजरिया अपना अपना, खेल चलो जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जो फल वृक्ष पर लगा है वो नियम से टूटेगा, जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, लेकिन कोशिश कर लेंगे नहीं, संभालने से नहीं संभलेगा, अशर बचाने से नहीं बचेगा, मर्ज बढ़ता ही गया जो जो उपचार किया, जो जो कोशिश की रोग बढ़ता चला गया, आचरण समझ में आ गया बचाने से नहीं बचते। तो कहा जब तक है तब तक सुख भोग लेने दो, कि नहीं सुख भोगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनमें सुख है ही नहीं, ये मिथ्या मान्यता है, इस संसार में सुख नहीं है, ये बात संसार भावना के माध्यम से कही गई। सुख मानने से तो नए कर्म बनते, तेरे कोई भोगना पड़ेगा देख ले। तो कहा नहीं नहीं सब मिल बांट के भोग लेंगे, तो एकत्व भावना खड़ी हुई, मिल बांट के नहीं भोग पाओगे, अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है, आप अकेला उतरे और मरे अकेला। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगिए जिए एक ही देते, अकेले ही भोगना पड़ेगा। क्या बात करते हो साहब अकेले अकेले की, आप फूट डलवाते हो हमारे में, कोई बात नहीं जैसे भी हैं, अपने तो अपने ही होते हैं, जैसे भी हैं तो अपने ही ना। तो फिर अन्यत्व भावना में लिखा जहाँ देह अपनी नहीं सहा ने अपना कोई, तुम किसकी बात करते हो, शरीर ही अपना नहीं। बात समझ में आई तो कहने लगा कि ये शरीर मेरा कैसे नहीं है, इसके प्रति कैसे अपनापन टूटे, इसको तो मैं संभाल के रखता हूँ, मेंटेन करके चलता हूँ, इतना सुंदर सोने जैसी चमकती हुई काया दिखाई दे रही है। तो कहा इस शरीर का स्वरूप समझ लेगा तो इसके प्रति अपनापन टूट जाएगा, इसकी वास्तविक तस्वीर यदि तेरे ख्याल में आ जाएगी तो इसके प्रति अपनापन टूटे बिना नहीं रहेगा। शरीर का स्वरूप बतलाया, इसके अशुचिता और अपवित्रता को बतलाया अशुचि भावना के माध्यम से। जब ऐसी अशुचि भावना की चर्चा की, देह का स्वरूप बतलाया, तो ये तो रोने लगा, मैं इतना अपवित्र हूँ, मैं इतना गंदा हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत सुंदर समझता था, वास्तव में ऐसी दशा है मेरे शरीर की, मैं तो बहुत अपवित्र हूँ। तो फिर आचार्य ने समझाया कि भैया जिस अपवित्रता की चर्चा की है इसमें तुझे खेद चिन्ह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देह की अपवित्रता तेरी नहीं है, तेरी अपवित्रता कुछ और है। तो एक बार स्वरूप समझ ले तो समझ में आएगा तू शरीर से अत्यंत भिन्न तत्व है, हाँ तुझमें भी अपवित्रता है, लेकिन कैसी है वो अपवित्रता, वो अपवित्रता है राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारी भाव, आश्रव भाव, वो तेरी अपवित्रता है। इसलिए अशुचि के तुरंत बाद में ट्रैक बदलते हुए बिल्कुल बाहर से बिल्कुल अंदर की तरफ आ गए और आश्रव भावना की चर्चा कर दी। अपना परिचय तो पता होना चाहिए कैसा हूं मैं, परिचय ही पता नहीं है, बहुत सुंदर एक परिचय मेरे सामने है, यहाँ पढ़ करके सुना देता हूँ आपको। अपना परिचय, नाम शुद्धात्मा, वर्तमान पता चतुर्गति वाटिका, रस नाली के अंदर या बाहर तीन लोक, स्थायी पता मुक्तिपुरी, पैतृक निगोद, वर्तमान मध्य लोक जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र, और जन्म तिथि अनादि अनंत, पद सिद्ध समान कारण परमात्मा, महत्वाकांक्षा सिद्ध दशा प्रकट करने की, योग्यता सिद्ध समान अनंत गुण, क्वालिफिकेशन ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त ज्ञान, कार्य क्षेत्र निज आत्म प्रदेश, अच्छा परिचय है, आत्म प्रदेशों के बाहर अपना कार्य क्षेत्र नहीं है, कार्य जानना देखना अनंत गुणों की अनंत पर्याय ये कार्य है। आदर्श देव शास्त्र गुरु एक्स्ट्रा रिमार्केबल सेक्स मेडिकल हिस्ट्री रोग नित्यात्म मोह राग द्वेष रोग का कारण परमे सुख बुद्धि लक्षण आकुलता दुख भय वेदना निदान स्वाध्याय आत्म ध्यान परामर्शदाता गीतरागी देव शास्त्र गुरु क्रिमिनल रिपोर्ट अपराध मिथ्या मान्यता स्वयं की हिंसा निज आत्मा का अनादर आदि सजा चार गति रूपी जेल जज आठ कर्म इन लास्ट मैं अपने पूरे होशो आवास में ये विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे ये समझ में अच्छी तरह आ गया है कि मेरी इस दुर्दशा का कारण मैं स्वयं ही हूँ, दूसरा कोई भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है और मैं स्वयं ही पथ्य का सेवन कर अपथ्य का निषेध कर अपनी भूल सुधार कर अपनी शक्तियों को प्रकट कर सकता हूँ। मैं सिद्ध पद को सहज प्रकट कर सकता हूँ, इसमें मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान भी सिर्फ मार्ग ही बता सकते हैं, चलना तो मुझे स्वयं को ही पड़ेगा। अतः मैं अपनी भूल स्वीकारते हुए अपने को मोक्ष मार्ग में लगाने का संकल्प लेता हूँ। तो पूरा का पूरा परिचय बतला दिया कि कैसा परिचय है अपना, कौन है हम, कैसे हैं हम, हमें खबर तो हो अपनी। ये अपना रोग है आश्रव भाव आदि, हमें लगता है कि ये जो शरीर की तकलीफ है ये मेरा रोग है। भैया ये तेरा रोग नहीं है, ये तो पड़ोसी का है। असली रोग तो उस रोग को अपना मानना है, जैसे मिथ्यात्व रोग कहते हैं। तो प्रभु कैसा है ये रोग, तो कह रहे हैं तुम्हारा ये रोग अनादि काल से चला आ रहा है, तुम्हें इसकी खबर ही नहीं है। आश्रव भावना में लिखा, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। आश्रव का दरवाजा खुला रहता है, दिन रात शुभ और अशुभ भावों से मेरा ये व्यापार निरंतर चलता रहता है। बिजनेस चल रहा है, आप बिजनेस करते हैं कि जॉब करते हैं? जॉब करते हैं, सर्विस है कि नहीं? नहीं, यहाँ तो बिजनेस वाले तो बिजनेस करते ही हैं, सर्विस वाले भी बिजनेस ही करते हैं। आपको पता नहीं है कि आपका बिजनेस कौन सा चल रहा है। आपका बिजनेस सुबह 10 से 5 नहीं चलता, आपका बिजनेस 24 घंटे चलता है। कौन सा है वो बिजनेस? वो बिजनेस है शुभ अशुभ भावों का। दिन रात शुभ अशुभ भावों से वो व्यापार चला करता है। आप कहेंगे साहब व्यापार तो चल रहा है, आप इसको व्यापार तो कह रहे हो, लेकिन व्यापार तो उसे कहते हैं जहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान होता हो। व्यापार होता है तो कुछ मिलता भी है कि नहीं, कुछ लाभ भी होता है कि नहीं, कुछ वस्तुएं आती हो और कुछ जाती हो कि क्यों नहीं होता है। मानस वाणी और काया ये मैसल है, ये दुकान है, ये दरवाजे हैं, इनके माध्यम से आश्रम का द्वार खुला रहता है। मेरे परिणाम खर्च होते हैं और कर्मों का आश्रय मिलता है, ये व्यापार निरंतर चलता रहता है। शुभ और अशुभ भावों का व्यापार सदा काल चला आया है, अनादि काल से शुभ अशुभ भावों का व्यापार करता आया है और इसके कारण नवीन कर्मों का बंधन भी होता है। आश्रम का द्वार खुला रहता सब जगह पर, जितनी जगहों पर आपको आश्रम भावनाएं मिलेगी सब जगह पर पुण्य पाप भावों की चर्चा की है, आश्रव भावों की चर्चा की है। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं इन आश्रव भावों से भिन्न हूँ, ये आश्रव मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये आश्रव हो तो रहे हैं, शुभाशुभ भावों से कर्म का आश्रव तो हो रहा है, लेकिन मैं अपने स्वभाव सामर्थ्य से उस पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। देखिए जिस बीमारी की चर्चा की, जिस तकलीफ की बात यहाँ बतलाई गई, जिस आश्रव भाव की बात यहाँ बतलाई गई, जब इसको असली रोग समझ में आ गया तो कहा प्रभु एक बात बताओ, हमारे कुएं में शरीर गंदा होता था तो नहा लेते थे, सफाई हो जाती थी। अब आपने गंदगी कुछ अलग प्रकार की बतला दी। अभी तक हम देह को अशुचि या पवित्र समझकर नहाते थे, तैयार होते थे, ऊपर से क्रीम पाउडर लगाते थे, हम साफ सुथरे हो जाते थे। अब ये आपने आश्रम भावों की अशुद्धता अपवित्रता अंदर में बतलाई है, इस अपवित्रता को पानी से तो नहीं धो सकते, अब क्या करें? इसका कोई उपाय है क्या? क्यों नहीं है इसका उपाय? क्या है उपाय? बोले संवर। इसलिए आश्रम के तुरंत बाद में संवर भावना लिखी। शब्द समझ में आते हैं ना, बहुत सरल है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार कभी नहीं रुकते हैं, शुभ अशुभ भाव ऑटोमेटिक चलते हैं। ऐसी व्यवस्था है, हर अंतर मुहूर्त में अशुभ से शुभ और शुभ से अशुभ चलता रहता है। अपने यहाँ जो व्याख्यान चलता है एक घंटा डेढ़ घंटा, तो क्या एक डेढ़ घंटे तक शुभ भाव ही रहते होंगे हमारे? आपको क्या लगता है शुभ भाव में काल बीतता होगा हमारा? शाम को जैसे अपन डेढ़ डेढ़ घंटा प्रवचन होता है, डेढ़ घंटे से भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी, तो क्या शुभ भाव ही चल रहा होगा? अंतर मुहूर्त में नियम से शुभ से अशुभ भाव हुए बिना नहीं रहता, अशुभ से शुभ भाव हुए बिना नहीं रहता, अपने आप बदलेगा। हिसाब अभी एक घंटा प्रवचन सुन रहे हैं हम यहाँ, तो एक घंटे में अशुभ तो कुछ नहीं करेंगे, होता है कुछ अशुभ? डेढ़ घंटा है आज, तो ये जो अशुभ है, ये अशुभ भाव कब आ जाएंगे हमारे? आते हैं क्या अशुभ भाव? ऑटोमेटिक आ जाते हैं, हमारे पकड़ में भी नहीं आता कब हमारे अशुभ भाव आ गए। मैं कहता हूँ ना, नेत्रों की पलकें झपकना जैसे हमें पता नहीं लगता है, हमें मालूम ही नहीं चलता है कब पलक झपक गई। इसी तरह से हमें पता ही नहीं लगता है कि कब कर्म आकर के बंध गए, कब पाप कर्म बंध गए, कब हमारा उपयोग बदल गया, कब शुभ भाव अशुभ भाव में बदल गया। और मैं यदि इस बात को स्थूल दृष्टि से समझने की बात कहूँ, पकड़ने की बात कहूँ, तो हम पकड़ सकते हैं जब हमारा ध्यान स्वाध्याय करते हुए भी प्रवचन सुनने से हटकर कहीं इधर उधर देखने में लगता है, पंखे की हवा खाने में लगता है, एसी की हवा खाने में लगता है, कोई मच्छर हो तो उड़ाने में हमारा उपयोग लगता है, इट मीन्स अशुभ भाव, शुभ नहीं कहेंगे उसको। जब हमारा उपयोग आसन बदलने में लगता है, जब हमारा उपयोग शरीर की तरफ लगता है, जब हमारा ध्यान कमर की तरफ जाता है, जब हम सीधे होते हैं, जब हमारा ध्यान घड़ी की तरफ चला जाता है, जब हम कपड़े संभालने लगते हैं, जब हमारे घुटने संभालने लगते हैं, पैर मोड़ने लगते हैं, जब हम बगल में बैठे हुए को देखने लगते हैं, जब हमारे को ये ध्यान आता है कि ये कैसा सोच रहा है, ये सब शुभ नहीं है ना। ये सारी की सारी बातें अशुभ ही तो है, बोलो इसको शुभ कहेंगे आप? शरीर की संभाल, शरीर की चिंता, शरीर की तरफ देखना, मकान की तरफ देखना, घर की तरफ देखना, कहीं फोन बज रहा है, कहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कि इसका ये हो रहा है कि नहीं, स्पीकर बराबर चल रहा है कि नहीं, आवाज कम आ रही है, कभी मुझे देखेंगे, कभी किताब को देखेंगे, कभी रिमोट को देखेंगे, कभी उसको देखेंगे, ये जो कुछ भी चल रहा है। और कभी कभी तो बहुत स्थूल दृष्टि से देखें तो इन सब के साथ में हमारा उपयोग ही नहीं मालूम कहां चला जाता है बहुत देर तक, ये तो फिर पकड़ में नहीं आता, हमारे को पकड़ में नहीं आता कि कब हमारा हाथ ऐसे हो गया, ठीक है ना, हमारे ध्यान में नहीं आ रही है ये बात, कब हमारा हाथ उठ गया, कब रख दिया और कब हमने कॉलर सही कर ली, हमारे को पता नहीं है। लेकिन कभी कभी तो बात ही निकल जाती है, हम न मालूम कोई बात सुनी और उस बात को सुन करके उससे रिलेट करके न मालूम कहाँ चले गए। दुनिया में सबसे तेज गति से दौड़ने वालों में यदि किसी का नाम है तो वो है मन उपयोग, इससे फास्ट स्पीड किसी की नहीं है। यहाँ बैठे बैठे हम शिखर जी जाकर के आ सकते हैं और शिखर जी से एकदम गिरनार जी पहुंच सकते हैं, एकदम शतरंज चले गए, बुंदेलखंड चले गए, जयपुर चले गए, इंडिया जाकर के आगे कितने आग भी गए आप लोग तो जाके भी आगे। कितना तेज दौड़ रहा है हमारा उपयोग, कितना फास्ट बदल रहा है, तो हम उसको भी देखने का प्रयास करें। दिन रात शुभ अशुभ ये बात मैंने शुभ के बीच में अशुभ की कही है। अशुभ भावों के बीच में भी शुभ भाव आते आएंगे ही ना। अंतर्मुख से ज्यादा यदि शुभ नहीं चल सकता तो अंतर्मुख से ज्यादा अशुभ भी नहीं चल सकता, ये भी नियम है। क्यों नहीं चल सकता? नहीं चलता, बस नियम है कर्मानुयोग का। 3 घंटे बैठ करके मूवी देख रहे हैं तो उसमें भी आप पुण्य बांधेंगे।
क्या बात कर रहे हो पंडित जी, गजब बात कह दी आपने, तो उसमें पुण्य बांधेंगे तो बहुत अच्छा है।
अरे नहीं नहीं, बाहुल्यता तो पाप की है, मैक्सिमम तो पाप ही बंधेगा, 99% तो पाप ही बंधने वाला है। हाँ लेकिन बीच में उपयोग जब कभी ऐसा लगता है, ओहो इसके साथ कैसा बुरा हो गया। तो ये जो आपका मंद रूप परिणाम है, ये शुभ भाव है। जब आपके मन में कोई बहुत किसी के प्रति सहानुभूति का भाव आता है, इट मीन्स आपने कुछ किंचित 0.00 समथिंग कुछ आपने उसमें बांधा है पुण्य, शुभ भाव था वो आपका, फिर अशुभ चला गया। अंतर्मुख के अंदर नियम से बदलेगा, उपयोग नियम से बदलता है, बदले बिना रह नहीं सकता, स्वरूप है उसका। तो दिन रात से शुभाशुभ भावों से आप सोते समय भी, क्यों नहीं सोते समय भी कर्म मन से शुभ अशुभ दोनों उपयोग का काम बराबर चालू है। ज्ञान शून्य कभी नहीं होता, ज्ञान का परिणाम कभी नहीं रुकता। लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे अनेक प्रकार के पापों से बचना हो तो सो जाओ, तो सोने में तो कोई पाप नहीं है। अरे सोने में जो गहल है, स्वरूप की विराधना है, स्वरूप के प्रति असावधानी और प्रमाद है, उसमें भी तीव्र पाप कर्म का बंध हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो दर्शनावरणी नाम का कर्म है ना, वो दर्शनावरणी कर्म के तीव्र उदय में इस जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। दर्शनावरणी कर्म के भेदों में है निद्रा, 5 प्रकार की निद्रा है, आप लोग जानते हैं ना कौन कौन सी?
कौन निद्रा,
निद्रा, रुतला। हाँ इसी यही है, इन्हीं को जोड़ लो आपस में। हाँ सबसे पहली है प्रचला, प्रचला के बाद में है दूसरी सेकंड नंबर पर निद्रा, निद्रा के बाद में है प्रचला प्रचला, उसके बाद में है निद्रा निद्रा, और उसके बाद में है स्थान वृद्धि। निद्रा के स्तर है ये, नींद के स्तर है, जिनमें फर्स्ट स्टेप कौन सा कहा? प्रचला। ये कैसी नींद है, कहाँ होती है? कि मैक्सिमम इस तरह की नींद वाले प्रवचन सभाओं में पाए जाते हैं। वो क्या है वो निद्रा? हाँ बस जपकी लेना, अरे जपकी लेना, और इतना ही नहीं कि कोई दूसरा बगल वाला व्यक्ति कहे कि सो रहे हो आप? नहीं नहीं मैं कहाँ सो रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ। और ऐसा भी हो जाता है, इतनी हल्की निद्रा होती है प्रचला कि उसमें कोई बात कही जाए और किसी को नींद आ रही है प्रचला, और उससे पूछे आगे तो नींद आ रही है कि नहीं नहीं बिल्कुल हूबहू वाक्य सुना दे रहे, माने कर्णेंद्री बराबर काम कर रही थी, शिवक्षम बराबर काम कर रहा है और गहल में है। ये है प्रचला। सेकंड नंबर पर है निद्रा, जिसे कहते हैं सामान्य नींद आना। नॉर्मल निद्रा कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति नॉर्मल नींद लेता है। थर्ड नंबर पर है प्रचला प्रचला, ये कैसा है? नींदों में बड़बड़ाना, कुछ शब्द कहना, मुख से लार निकल जाना, क्या ऐसी नींद आना कि अपने को कुछ पता न लगे, हाथ पांव पछाड़ना नींद में, नींद आ रही है पता नहीं, वो है प्रचला प्रचला। फिर चौथे नंबर पर है निद्रा निद्रा, इतनी गहरी नींद कि उठाने से भी नहीं उठे। जगत में लोग इसके लिए कुंभकर्ण निद्रा का प्रयोग करते हैं। सुबह कहकर के सोए, रात को कहकर के सोए हम, मेरा एग्जाम है और सुबह मैं जल्दी उठ करके पढ़ूंगा, मुझे 4 बजे उठा देना। और मम्मी ने खूब उठाया 4 बजे, और फिर 7 बजे उठा, आपने मेरे को उठाया क्यों नहीं? हमने तो खूब उठाया था, उठाई नहीं। ये है निद्रा निद्रा,
और इस्तेमाल गृद्धि तो हम सब जानते ही हैं कि ऐसी खतरनाक है और ऐसा स्वरूप है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम सो रहे हैं। सब काम करता है, चलता फिरता है, घूमता फिरता है। हम सभी मानो ऐसी निद्रा में सो रहे हैं, लग रहा है कि हम जगे हुए हैं, लेकिन सच बात यही है हम सब सो रहे हैं। सब सो रहे हैं हम लोग, स्कैन वृद्धि जैसी निद्रा है। नींदों में किलोमीटर चले जाएं, मीलों चले जाएं, और नींद ना खुले। घूमे आए, फिर आए, जाए आए, कोई काम कर आए, किसी की हत्या कर आए, बैंक लूट आए, चोरी कर आए, बोलो आप, स्कैन वृद्धि नाम की निद्रा है। खैर, निद्रा में भी उपयोग चलता रहता है, ज्ञान शून्य नहीं होता, और उस उपयोग के कारण, शुभ अशुभ उपयोग के कारण निरंतर कर्म का आश्रय भी होता रहता है। शुभ अशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस से, वाणी से और काया से आश्रमों का द्वार बराबर खुला रहता है, दरवाजा बराबर खुला रहे। अब यदि आपको ऐसा लगता हो कि शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, यदि ऐसा लगता है आपको कि आप परेशान है शुभ अशुभ भावों से, आप यदि ऐसा फील करते हैं कि शुभ अशुभ भाव आकुलता ही उत्पन्न करने वाले हैं, देखो कैसे शब्द का प्रयोग किया है, शुभ और अशुभ की ज्वाला से, अकेले अशुभ नहीं शुभ को भी ज्वाला कह रहे हैं। झुलता है मेरा अंतस्थल, मेरा अंतरंग हृदय झुलस रहा है, पीड़ित रहे हम शुभ अशुभ ज्वालाओं से, है क्या पीड़ा। देखो मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ, अशुभ को तो सारी दुनिया बुरा कहती है, लेकिन शुभ भी हमें जलाने वाले हैं, झुलसाने वाले हैं, ये कितने लोग जानते हैं। ये तत्व चिंतन की बात चल रही है, आश्रय संवर निर्जरा ये सब भावनाएं हैं, तत्व हैं। आप विचार कीजिए, ऐसा आपको पुण्य भाव में आकुलता लगती है या नहीं, शुभ भाव में आकुलता दिखती है या नहीं, अंदर में वेदना होती है शुभ भाव में, प्रवचन सुनने की आकुलता, साइन से पहुंचने की आकुलता। हम शाम को यहाँ प्रवचन में जाते हैं, प्रवचन के लिए कितना है यहाँ से, है 60-70 किलोमीटर, तो किलोमीटर की अपेक्षा है 35-40 माइल, और एक माइल में 1.6 किलोमीटर, कितना हो गया 64-65 किलोमीटर के आसपास हम यहाँ से जाते हैं रोजाना। अब रास्ते में ट्रैफिक भी मिलता है, कभी कभी समय भी ज्यादा लगता है, तो आकुलता होने लगती है। तो ये किसकी आकुलता है, ये प्रवचन की आकुलता है, शुभ भावों की आकुलता है, मंदिर जाने की आकुलता है, कभी कभी तो शुभ भाव करते करते भी आकुलता होने लगती है। अरे एक घंटे का प्रवचन था, ये कहाँ आज बीच में डेढ़ घंटा कह दिया, क्या एक घंटे की जगह डेढ़ घंटा चलेगा। हम तो सोचते थे कि 8:30 से 9:30 फ्री हो जाएंगे, 10 बजे फ्री होंगे, तो टाइम बढ़ता है तो आकुलता होने लगती है हमारे को। ये किसकी आकुलता है, शुभ भाव करने के लिए आकुलता और शुभ भावों के बीच में आकुलता। यद्यपि हो सकता है कि वो आकुलता पाप कर्म के बंधन करने में निमित्त बने, क्योंकि ये जो बीच में देखो इसमें जो खेत खिन्नता हो रही है ये पाप बंधन वाली आकुलता है, और इसमें मजा आ रहा है, समय खत्म नहीं हो जाए और चले, ये जो आकुलता है ये शुभ भाव वाली आकुलता है, पुण्य बंधन वाली आकुलता है। दोनों प्रकार की आकुलता हो सकती है, आकुलता में जीव पुण्य भी बांधता है और आकुलता में जीव पाप भी बांधता है, दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं जीव के। तो मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता, इसके बाद में कहा शुभ और अशुभ दोनों ही की ज्वालाओं से झुलस रहा है अंतस्थल मेरा हृदय, झुलसा है मेरा अंतस्थल, अब शीतल सम्यक्त्व की किरणें फूटे और अंतरंग में संवर प्रकट हो, संवर से जागे अंतर्बल। ये झुलस रहा था ना, जो आग लगी थी वो आग कैसे बुझ सकती है, कि सम्यक्त्व रूपी जल की किरणों से ही, उस जल से ही वास्तव में ये संवर रूपी बल मिलेगा और ये आत्मबल जागृत होने से वो आप्रभु का अभाव हो पाएगा। समझ ही एकमात्र ऐसा है जो आश्रम का अभाव करने में समर्थ है। आश्रम निरोध है समर है, ऐसा सूत्र है। आश्रम के निरोध का नाम समर है, आश्रम के रुकने का नाम समर है। समर आश्रम का विरोधी है। सारे जगत में आश्रम का आधिपत्य दिखाई देता है, वर्चस्व दिखाई देता है, लेकिन वो जो आश्रम अभिमान करता था ना, ये समर के बारे में बनारसी दास जी कहते हैं सवाया बल फोड़ के आया। जैसे शेर को सवा शेर मिल जाता है ना, ये तो सोचता था आश्रव कर्म तो सोचते थे अपन तो बहुत भगवान है, अपने को कोई डर नहीं है। एक बार क्या हुआ कि कोई जैसे स्वाध्याय करने के लिए आया, तो कर्मों में थोड़ा सा जो नए नए थे ना उनको थोड़ी सी खलबली मची थी, स्वाध्याय करने जा रहा है अब अपना तो दाना पानी मुश्किल हो जाएगी, अपना तो अभाव हो जाएगा, मकान खाली करना पड़ेगा इसका। अपने को स्वाध्याय में जा रहा है, आत्मचिंतन मनन करेगा, सम्यक दर्शन ले लेगा, निर्जरा चालू हो जाएगी, हमें निकाल बाहर फेंकेगा। तो दूसरे जो पुराने थे ना उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनसे डरो मत, अभी अंदर जाएगा फिर बाहर निकलेगा तो दोबारा अपन इसको दबोच लेंगे। तो आप हावी हो जाते हैं। कुछ समय के लिए जब स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं तो कषाय भाव थोड़ा सा मंद होते हैं, लेकिन जब यहाँ से उठते हैं तो फिर दोबारा वही कषाय आदि भाव हावी हो जाते हैं। जब तक कर्म बलवान दिखाई देगा तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा, और जब बलवान कर्म न दिखाई देवे आत्मा बलवान दिखाई देवे तो क्या काम हो जाएगा। अपन जो शाम को चर्चा करते हैं प्रवचन में, उसमें अपन कोई कर्म के बलवान करने की चर्चा नहीं कर रहे, आज और कर लेंगे चर्चा, थोड़ा याद दिलाना कि कर्म कितने बलवान है। क्या आप कर्मों को बलवान मानते हो? कर्म बलवान नहीं है भैया, अपने स्वभाव की सामर्थ्य को पहचाने और अपने आप को बलवान जाने तो कर्म तो तुझे रास्ता दे देंगे, कर्म तो तुरंत टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, कोई दम नहीं है उसमें। देखिए फिर क्या कहा, शीतल संकित किरणे फूटे संबर से जागे अंतर बल। एक बात तो समझ में आ गई पंडित जी के, संबर होगा तो नए कर्मों का आश्रम तो नहीं होगा, लेकिन जो पुराने बैठे हैं उनका क्या होगा? हमने दरवाजे बंद कर दिए, अब नए चोर तो नहीं आएंगे, लेकिन जो बैठे पूर्व चोर उनका क्या होगा? पिछले जो चोर अंदर में बैठे हुए हैं उनके लिए भी तो कोई उपाय करना होगा। तो फिर संबर के तुरंत बाद में निर्जरा भावना लिखी। एक प्रश्न यहाँ ऐसा होता है, मैं कई बार ऐसा लगता है कि आश्रव के बाद में बंद भावना क्यों नहीं लिखी, और आश्रव के बाद में बंद भावना नहीं लिखी थी तो फिर संवर के बाद में निर्जरा भी नहीं लिखनी चाहिए थी, और संवर के बाद में निर्जरा लिखी है तो आश्रव के बाद में बंद भी लिखना चाहिए था। क्यों नहीं आई बीच में? तो जब हम चिंतन करते हैं तो तुरंत पता लग जाता है अपने को। साधारण सी बात है, आश्रव पूर्वक बंद ऑटोमेटिक होता है, लेकिन संवर पूर्वक निर्जरा अपने आप नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात?
आश्रव होता है तो बंद तो
हो ही गया,
आश्रव ही बंद है।
वो आ रहे हैं तो वो रुके रहे हैं, अब बंद के लिए कोई अलग नहीं होता कोई प्रोसेस। जो आश्रम के कारण है वही बंद के कारण है, जो बंद के कारण है वही आश्रम के कारण है, कोई फर्क नहीं है उसमें। जैसे नाव में छेद हो रहा है तो जल का आना तो आश्रम है, अब आने के बाद में रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मरता जा रहा है, वही बंद है। अच्छा संवर किसका नाम? छेद बंद कर दिया तो नया पानी तो नहीं आ रहा, संवर हो गया, लेकिन जो पानी भरा है तो छेद बंद करने से तो नहीं रुकेगा। इसलिए संवर के बाद में निर्जरा जरूरी है। संवर माने नए कर्मों का नहीं आना, निर्जरा माने पुराने बैठे हुए कर्मों का छूट जाना। इसलिए यहाँ निर्जरा भावना की चर्चा की।
चालू
ही रहती है
तो निर्जरा होती
है, निर्जरा होती है लेकिन पूर्व से बंधे हुए की होगी ना। हाँ संवर होने पर भी कुछ कर्मों के का तो संवर हो गया, अब निर्जरा तो जरूरी है, निर्जरा बाद सेकंड स्टेप है। यद्यपि संवर के साथ साथ में निर्जरा भी चलती है, ठीक है ना, लेकिन संवर हो जाने पर पूरी तरह से खत्म हो गया मामला ऐसा नहीं है, निर्जरा तो चलती रहेगी अभी जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा। ऐसा हो सकता है हमने नाव का छेद बंद किया और पानी निकालना भी तुरंत चालू कर दिया, ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन छेद तो पहले पूरी तरह से बंद हो तब जाकर के निकलना कार्यकारी होगा। या निर्जरा भावना में क्या कहते हैं, फिर तप की शोधक मन ही जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्जर फूट पड़े। तप की शोधक, फिर जलाने वाली नहीं, बहुत बहुत मार्मिक बात है, शोधन करने के लिए। पहले भी अग्नि शब्द का प्रयोग किया था, पहले अग्नि किसके लिए कहा था, शुभ अशुभ भावों से है ना जलता है मेरा अंतस्थल, शुभ और अशुभ की ज्वाला से, उनको भी अग्नि कहा था, उनसे झुलस रहा है। और यहाँ तप के लिए भी अग्नि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो अग्नि हमें जलाने वाली थी और ये अग्नि कर्मों को जलाने वाली है, इतना फर्क है। यहाँ हम नहीं जलेंगे इस अग्नि में, इस अग्नि में कर्म जलेंगे। हमें पता है ये अग्नि ऊपर ऊपर की गंदगी को जला देगी। सोने को जब, स्वर्ण को जब डाला जाता है अग्नि में तो कृति काली में जल जाती है, स्वर्ण नहीं जलता है, अपवित्रता जल जाएगी, गंदगी जल जाएगी। हमें पता है क्या चीज जलेगी और क्या चीज नहीं जलेगी, हमें पता है क्या चीज धुलेगी और क्या नहीं धुलेगी। कपड़ा यदि हमने धोने के लिए डाला है, साबुन लगाया है, तो हमें पता है गंदगी तो धुलेगी लेकिन कपड़े की जो डिजाइन है वो नहीं धुलेगी। नेल तो साफ होगा लेकिन कपड़े का कलर साफ नहीं होगा। गंदगी तो चली जाएगी लेकिन कपड़े के ऊपर जो बनी हुई डिजाइन है वो नहीं जाएगी। बस सब रूपी अग्नि में जलाओ, किसे जलाएं, कर्म को। तप की वन्नी जले, अग्नि जले, तो फिर क्या होता है, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। कर्म की कड़ियां जो बंधी हुई है वो टूट पड़ती है और आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से मानो अमृत के झरने झरने लगते हैं। संवर हो गया, उसके बाद निर्जरा हो गई। संवर में आत्म अनुभव की बात थी, संवर में गुणस्थान चौथा था और निर्जरा में गुणस्थान और आगे बढ़ गया। क्या संवर में तो क्या हुआ था बताओ मेरे को, सिर्फ सम्यक दर्शन हुआ था ना संवर का मतलब, तो अब आगे बढ़कर के निर्जरा में गुणस्थान और बढ़ गया, छठवां सातवां गुणस्थान हो गया, मुनि हो गया, निर्जरा प्रमुखता से चलने लगी, आत्मा में अतिंद्रिय आनंद रस के झरने झरने लगे, अपूर्व आनंद रस टूट करके बहने लगा, अमृत के निर्जर टूट पड़े। ये निर्जरा कर्मों के एक देश छूट जाने को निर्जरा कहते, ठीक है। अब छठे सातवें गुणस्थान तक आ गए थे, अब श्रेणी चढ़ना चालू होगा। क्या होगा श्रेणी चढ़ने के काल में, तो कहा श्रेणी चढ़ने के काल में इस जीव के ध्यान होता है शुक्ल, शुक्ल ध्यान, और उसमें संस्थान विषय आदि का चिंतन चलने लगता है। तो वहां श्रेणी चढ़ते हुए लोक भावना का चिंतन चलने लगा, इसलिए निर्जरा के तुरंत बाद में लोक भावना दे दी, स्थिति बढ़ गई, स्टेप बढ़ गया। माने जो निर्जरा हो रही थी अभी छठवें सातवें अनुष्ठान में, सिर्फ स्वसंवेदन हो रहा था, उस स्वरूप लीनता के बल से जैसे ही ऊपर चढ़े, अब वो चिंतन में विकल्पों में लोक के स्वरूप का चिंतन चलने लगा। तो यहाँ लोक भावना लिख दी निर्जरा के तुरंत बाद में। क्या लिख दिया लोक के बारे में,
तो लोक भावना चलने लगी, विकल्प नहीं होने लगते,
नहीं हाँ बुद्धिपूर्वक चलते, हाँ वो निर्विकल्प अनुभूति कायम रहती है, हाँ फिर भी चलता है, विचार चलता है, लोक के संदर्भ में विचार चलता है, श्रेणी चढ़ने पर भी। लेकिन छठवें सातवें गुण स्थान से ऊपर की जो भी दशा है, मुनि भूमिका से ऊपर, वो निर्विकल्प ही होती है दशा, वहां विकल्प नहीं होता। शुद्ध उपयोग की धारा अखंड चलती है, अशुभ उपयोग नहीं है। सातवें गुण स्थान से ऊपर कहीं भी शुभ भाव नहीं है, शुभ उपयोग नहीं है, धारा चल रही है बराबर। निर्जरा की धारा भी चल रही है, अतिंद्रिय आनंद रस की धारा भी चल रही है, शुद्ध उपयोग भी अनवरत वर्त रहा है। लेकिन उस शुद्ध उपयोग के काल में ही अर्थ से अर्थांतर, ज्ञेय से ज्ञेयांतर, संस्थान विचय, ये सब चलते रहते हैं भाव। माने लोक के स्वरूप आदि का चिंतन चलता रहता है। छठवें सातवें गुणस्थान में भी धर्म ध्यान में भी, चौथे से सातवें गुणस्थान का धर्म ध्यान है, और सातवें गुणस्थान से ऊपर चल करके शुक्ल ध्यान है, तो शुक्ल ध्यान के काल में भी ये स्वरूप का चिंतन चलता है। उस चिंतन के बारे में यहाँ लोक की चर्चा की, स्वतंत्रता का चिंतन है। शुभ भाव नहीं कहेंगे उसे, है शुद्धोपयोग, अबुद्धि पूर्वक है वो। छठवे तक बुद्धि पूर्वक, सातवें से जो कुछ भी होगा सब अबुद्धि पूर्वक। अबुद्धि पूर्वक का अर्थ जो स्वयं के भी पकड़ने न आवे, वो अबुद्धि पूर्वक। मुनिराज की भी पकड़ में नहीं आता, वो चलता है। वसुंधर किन हूं न करे न धरे को, शट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक वाही दिन समता, दुख सहे जीवन भ्रमता। इस लोक में जो लोग किसी का किया हुआ नहीं है, किन हूं न करे न धरे को, कोई धारण करने वाला नहीं, न हरे को, इस लोक का कोई नाश करने वाला नहीं। किन हूं न करे न धरे को, शट द्रव्यमयी, छह द्रव्यात्मक है लोक, न हरे को, कोई हरने वाला नहीं है। ऐसे लोक में ये जीव बिना समता के, समता भाव के बिना निरंतर भ्रमता चला आया है। और अब जब श्रेणी चढ़ने लगे तो यहाँ युगल जी बाबू जी क्या कहते हैं, हम छोड़ चले यह लोक तभी है? लोक भावना में क्या चिंतन करें, हमने छोड़ दिया ये लोक। अब क्या चल रहा है लोक भावना के बारे में चिंतन, हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, क्षण मात्र में ही लोक के अंत में जाकर के विराजमान हो जाएंगे लोक को छोड़कर। कोई गए साहब हम दुनिया छोड़ चले, हमने दुनिया छोड़ दी, हम तो कई बार छोड़ चुके ऐसे, नहीं नहीं तुम तो दुनिया में ही रहते हो, तो फिर लोक छोड़ करके क्या लोक के बाहर चले जाएंगे, कि नहीं लोक के अंत में हम छोड़ चलेंगे लोक तभी, हम छोड़ चलेंगे लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, क्षण में ही लोक के अंत भाग में जाकर अर्थात सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जावे, और निज लोक हमारा वासा हो। वासा माने निवास स्थान, हमारा जो रहने का स्थान है, जो निवास स्थान है, वो हमारा निज लोक हो। देखो उपचार से कहा जाता है सिद्ध शिला, और वास्तव में असली में देखा जाए तो मोक्ष तो बाहर में कहीं है ही नहीं। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। उनके साथ मोक्ष जाना है हमारे को, किधर से जाएंगे सब, कौन सा रूट पकड़े मोक्ष जाने के लिए? अरे कहीं बाहर में जाने की जरूरत ही नहीं है, मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। इसलिए बाहरी घुड़ दौड़ को सब रोक दो, और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर,
बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। क्या करें साहब, बहुत मुश्किल से मिला है। तो आपने तो कह दिया मोक्ष बाहर की मंजिल नहीं है, क्या करें।
डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो इसी कला है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है।
मोक्ष कोई बाहर की मंजिल नहीं है, उसका द्वार तो आपके भीतर खुला हुआ है। सर्व विकल्पों को रोक दो, सर्व विकल्पों को तोड़ दो, सब तरफ से दृष्टि को हटाओ और अपने भीतर में देखो, आपको वही मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाए साहब, हम मोक्ष जाना है, बोलो कहाँ से मोक्ष होगा। समय शिखर जी से होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। बाहरी किसी क्षेत्र से मुक्ति नहीं है, स्व क्षेत्र में आने पर मुक्ति मिलती है, पर क्षेत्र मुक्ति का हेतु नहीं बनता है। हम सोचे कि बाहरी क्षेत्र से हमारे को कुछ मुक्ति मिल जाएगी, तीन लोग तीन काल में संभव नहीं है। कहाँ जाके ध्यान करें साहब, ध्यान सेंटर।
चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, जमीन समाये रहते हैं, हर काम जगत के किया करे, नहीं राग किसी से करते हैं।
कहते यानी जी क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी रहे, भोजनालय में रहे चाहे शौचालय में रहे, ड्राइंग रूम में रहे चाहे हॉल में रहे, मंदिर में रहे चाहे घर में रहे, ट्रेन में सफर कर रहे हो चाहे फ्लाइट में सफर कर रहे हो, बस में हो चाहे गाड़ी में हो, क्या फर्क पड़ता है। यानी तो अपने में रहते हैं। दुनिया फोटो खींच करके कहती है कि आप तो वहां थे, और वो कहते हैं हम तो अपने से बाहर निकलते ही नहीं है। बाहर में वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये यहाँ है, अरे इसमें बाहर में देखने में ऐसा लगता है। बोले राज कहाँ रहते हैं, बोलो मंदिर में, गुफाओं में, जंगल में, ये सब असद्भूत व्यवहार में ही कथन है। सब नहीं पढ़े होंगे आप पहले, सब असद्भूत व्यवहार के कथन है। मुनिराज को जंगल में देखना, तो कहाँ रहते हैं मुनिराज, निज में समाये रहते हैं। आहार करते हैं अपने में, क्या खाते हैं, अति मेरी आनंद रस का स्वाद लेते हैं, और क्या खाते हैं। मुनिराज मिठाई खाते हैं कि नहीं, यहाँ पड़े जी प्यासों को तो खाने में तो कोई दोष नहीं है, अवश्य नहीं है तो खाने में क्या दोष है, खा सकते हैं मुनिराज। मिठाई खाते हैं क्या मुनिराज, स्वाद लेते हैं क्या, नहीं रस लेते हैं या नहीं है? रस का रस लेते हैं या नहीं, आम रस का रस, रस नहीं लेते। रसना इंद्रिय खराब नहीं है, रसना इंद्रिय बराबर है, रसना इंद्रिय से होने वाले क्षयोक्षम ज्ञान भी बराबर है, लेकिन उसमें रस नहीं लेते, उसमें उपयोग का जुड़ान नहीं करते। हमें भी यही काम करना है, कहीं भी रहे, फ्रेंड भाई से बात चल रही थी रात में, तो कहीं भी रहे, अपना तो वही देह चता, कहीं भी रहे, सब जगह एक ही काम है। स्वरूप चिंतन जो है वो उसमें कहीं बाधा नहीं होती। दुनिया की कोई परिस्थिति हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, वो है स्वरूप चिंतन।
चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, कहीं भी रहो, दुकान पे, फैक्ट्री में, ऑफिस में, कहीं भी रहो ना, लेकिन काम क्या करना है, रहते वहां है, रमते नहीं है। रमते कहाँ है अपने में, चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं।
तन्मयता कहीं नहीं है, जुड़ान किसी से नहीं है,
मित्रता सबसे, घनिष्ठता किसी से नहीं, सबसे संबंध है, मित्रता है सबसे, सबसे बात करते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, लेकिन लगाओ मरेगा, झटका लगेगा। तो सावधान रहना, यहाँ सावधानी की बात बतलाते हैं, अपने में रहते हैं, निज लोक हमारा वासा हो, अपना लोक ही, मैं अपने असंख्यात प्रदेश ही अपना वास हो जाए, अपना क्षेत्र बन जाए, हम अपने में समा जाए, हम अपने में रह जाएं। अरे जब तक घर से बाहर है तब तक परेशानियां हैं, और जब घर में है तो कैसा भी हो आराम है, घर से बाहर निकले और परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, घर से बाहर निकले और परेशानियां चालू हो जाती है, आंधी है, तूफान है, परेशानी है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ, कहीं गर्मी, कहीं कुछ, जो कुछ भी आंधी तूफान, और घर में आके दरवाजे बंद कर लिए तो बाहर में कुछ भी होता हो ना, बोलो बाहर से पत्थर ओले बरस रहे थे तो पार्श्वनाथ स्वामी अंदर जाकर के दरवाजे बंद कर लिए तो बाहर के पत्थर ओलों का क्या फर्क पड़ेगा, बरसते होंगे बाहर, आपके बाहर बहुत तेज बरसात आ रही हो और आप घर के अंदर बैठे हो तो आपको क्या लगता है, आ रही होगी, हम शांति से बैठे, अपने घर के दरवाजे बंद करके शांति से बैठे हैं तो बाहर में होने वाले उपद्रव की कोई चिंता नहीं होती। इसीलिए ज्ञानी जीव उपसर्गों के काल में और परिश्रमों के काल में भी अपने स्वभाव में रहते हुए आनंद का विजन करते, निज लोक हमारा वासा हो, निज लोक, चैतन्य लोक, आत्म लोक, हमें खबर होनी चाहिए कि हमारा लोक कौन सा है, हमें लोक की खबर नहीं है, हमें दुनिया की खबर नहीं है, हमारी दुनिया कहाँ है। आपको लगेगा देखो दो बातें आ गई है यहाँ, एक तीसरे नंबर की भावना थी उसका नाम था संसार, और एक दस नंबर की भावना है उसका नाम है लोक, क्या फर्क है दोनों में, संसार लोक अपन तो एक अर्थवासी समझते, दोनों अलग अलग भावनाएं क्यों लिखी, कि संसार हमारे में और हम लोक में, नहीं बस संसार भावना में जो राग द्वेष आदि है, जो दुखानुभूति है उसकी चर्चा की, वो बाहर में नहीं तो अंदर में, और लोक भावना में लोक के आकार और स्वरूप का चिंतन किया गया, जगत का चिंतन किया गया, वो लोक है, क्षेत्र की चर्चा वो लोक भावना में, और भावात्मक चर्चा वो संसार भावना में, ये अंतर है संसार भावना में और लोक भावना में। संसार भावना में जगत के स्वरूप और दुख का चिंतन किया जाएगा, पीड़ा का चिंतन किया जाएगा, क्यों गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार अपारा, क्या में सुखमा ना ही लगा रहा, और लोक भावना में क्या चिंतन किया जाएगा, चौदह राजू संग नव लोक पुरुष संठान, चौदह राजू संग नव, ये जो चर्चा की है ये लोक का चिंतन है, ये लोक भावना। यहाँ इन्होंने निज लोक की चर्चा करके बहुत आध्यात्मिक पुट दे दिया है इस लोक भावना की चर्चा में, क्योंकि बाहरी लोक को तो सारा जगत लोक कहता है, लेकिन निज लोक भी जो लोक है ये कोई दिल्ली ज्ञानी पुरुष ही जानते। तो निज लोक हमारा वासा हो, मिसाल जब आप लोक अपने लोक में चले जाएंगे तो जितने शोक हैं उन सब का अंत हो जाएगा, कि होने दो फिर हमको क्या, निज लोक हमारा वासा हो, शोक अंत बने फिर हमको क्या, शोक का अंत हो जाए, शोक का अभाव हो जाए फिर हमको क्या, फिर हमें क्या चिंता, फिर हमें क्या टेंशन, फिर हमें क्या विकल्प, जो होना होगा तो होगा। इस तरह से यहाँ चर्चा की गई निर्जरा के तुरंत बाद में लोक भावना के अंदर। अब जब श्रेणी चढ़ रहा था, समझना कहाँ तक पहुंच गए थे अपन, क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते चर्चा कहाँ से शुरू की थी, संयोगों से, संयोगों से बढ़ते बढ़ते चिंतन बदलता गया, स्वरूप में सावधानी बढ़ती चले गई, अंदर में आया, रागादि परिणामों को दुख का कारण समझा, उसको छोड़ा, स्वभाव का चिंतन किया, निज अंतर बल जागृत हुआ, संवर हो गया, निर्जरा हो गई, संत हो गया, छठवे सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंग भी संत हो गया। अब श्रेणी चढ़ने लगा, लोक भावना का चिंतन चलने लगा। अब ऊपर चल करके क्या होता है, लोक के तुरंत बाद में बोधि दुर्लभ केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए बोधि दुर्लभ भावना ने ज्ञान की दुर्लभता की चर्चा की है, तो केवल ज्ञान की दुर्लभता मुख्य रूप से है। और फिर जब हम सामान्य दुर्लभता की बात करते हैं तो फिर बोधि का अर्थ रत्नत्रय जी कर लेते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दुर्लभता। बोधि मतलब ज्ञान, बोधि मतलब रत्नत्रय भी कर सकते हैं, रत्नत्रय करें, ज्ञान करें, वास्तव तो में केवल ज्ञान वो दुर्लभ। बोधि दुर्लभ और भावना, उसकी दुर्लभता का चिंतन करना। बहुत तरह से शास्त्रों में उसकी दुर्लभता बतलाने रूप चिंतन किया है, माने उसका चिंतन करते हुए चर्चा शुरू की, निगोद से निकलने की, वहां से चलते हुए निगोद से निकलना आसान काम नहीं था। आपको पता नहीं है आप जिस जगह पर बैठे हैं कि कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है और किस लेवल पर आकर के बैठे हैं। आकर्षण हो रहा है कर्मों का, संक्रमण हो रहा है, बदल रहे हैं इन परिणामों से, स्वाध्याय के परिणामों से। ये साधक मिलता ही नहीं है साथ सुनने को, कितने लोगों को मिलता है बताओ मेरे को। आपके यहाँ मियामी में, यहाँ फ्लोरिडा में कितने लोग होंगे, कितनी पॉपुलेशन होगी? नहीं थोड़ी, दो ढाई मिलियन, और एक मिलियन 10 लाख, मतलब कितना हो गया, 25 लाख, 25 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। आप कल्पना कीजिए इतने लोगों में से कितने लोग सुनते हैं, बताओ मेरे को। 25 लाख में से 25 नहीं है जिनको रुचि हो। क्या है स्थिति, किसको मिलती है ये बात सुनने को? धर्म ध्यान करना तो सब चाहते हैं, ये शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा सुनना महान दुर्लभ है, कहानी पढ़ना दुर्लभ है, कानों में सुनने को न मिले। बहुत भाग्य से मिल गया है हमारे को, नित्य निगोद से निकलना ही दुर्लभ है साहब, वहाँ से निकलता नहीं है जीव। अनंत 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 काल हो जाता है तो नित्य निगोद से निकल करके बाहर नहीं आता है, और कदाचित निकल करके बाहर आ जावे तो फिर एकाध पर्याय दूसरी धारण करके दोबारा निगोद में चला जाता, आगे नहीं बढ़ पाता। अनंत जीव लाइन लगा करके बैठे रहते हैं, अनंत, उनमें से एक को चांस मिलता है। आप देखो अपन कहाँ सेलेक्ट हुए और कहाँ सिलेक्शन हो गया अपना। 100 लोग किसी कंपटीशन में बैठे हैं, हमें लगता है कि 100 में से अपने को नंबर मिल जाए तो अपन मजा आ गया। 100 में से 1, हम कहते हैं हमारा बेटा सैकड़ों में एक है। फिर और ज्यादा बड़ी बात कहें तो कहें 1000ों में 1 है, और बड़ी बात कहें तो 1,00,000 में 1 है, इससे ज्यादा तो 1,00,000 में 1 है। 1,00,000 में 1, 1,00,000,000 में 1 थे हम। क्या चांस मिल गया था हमारे को, तो जिससे निगोद से निकल करके बाहर आ गए। फिर वहां से पृथ्वी का एक जल का गाड़ी में भटकते रहे, कौन सा कल्याण हो गया निकल भी गए तो, वहां से बाहर निकल गए तो क्या हो गया। ये तो समझ लो आप, समुद्र में से निकला और खाई में गिर गया, ऐसा ही हुआ है। नित्य निगोद से निकल करके एक इंद्रिय आदि में चला गया तो ये सोचा निकल इतना ही हुआ है कि बस वो बड़ा महासागर था और ये थोड़ा छोटा है, लेकिन पड़ा है अभी उसी में। फिर कोई असंख्यात जीवों में से कोई भाग्यशाली होते हैं जिनको 2 इंद्रिय दशा की प्राप्ति हो जाती है। फिर 2 इंद्रिय दशा से कोई भाग्यशाली होते हैं जो 3 इंद्रिय होते हैं, चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ काल होता है। 3 से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों में नारकी नहीं, देव नहीं, असंख्यात असंख्यात है नारकी देव। त्रियंच बनना दुर्लभ, और त्रियंच से मनुष्य बनना दुर्लभ। मनुष्य हो जाए तो आपने कहा 2.5 मिलियन, तो मनुष्य ही तो है सब, क्या हो गया। नर तन पाया भी तो जिन श्रुत ना पाएगा,
फिर ये चीज चले गई हमारे हाथ से, इतना दुर्लभ है दोबारा नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ कई बार समुद्र में से निकल रहे हो अपन लोग जहाज में बैठ के, और पानी थोड़ा सा उछाल आवे और हम हाथ हिलाएं ऐसे, डायमंड से अंगूठी पहन रखी थी वो निकल गई और गिर गई वहाँ जहाज में, पानी समुद्र में गिर गई। अब बोलो अब निकालो उसको, कब मिल जाएगी? दो मिनट बाद में आपको ध्यान भी आ गया कि गिर गई थी, अब तलाशो आप समुद्र में। ऐसी हालत है कि कितनी देर लगेगी, कितना टाइम है महेंद्र भाई अपने पास में, कहाँ है टाइम? जीवन पूरा होता हुआ दिख रहा है, कहाँ जाएंगे? ऐसा लग रहा है परभव नजदीक आ रहा है, अगले क्षण का भरोसा नहीं है। दो मिनट बाद में यदि मेरा जीवन पूरा हो गया तो क्या होगा? कल मैंने रात में कही थी ख्याल रखने वाली बात, अपना ख्याल कर भैया, ये सब खत्म है। फिर कोई पूछने के लिए नहीं आएगा, ना पत्नी काम आएगी, ना बेटा का काम आएगा, ना प्रवचन काम आएगा, ना श्रोता आएंगे। तो मौत आएगी तो क्या होगा? कौन बचा लेगा? सर पड़ाता रहेगा बोलो, बचा लो मेरे को, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। चलो एक इंद्रिय में, निगोद में, त्रियंश में, नरक में, देवगति में भी चला गया तो क्या होगा? फिर वहां जाकर के थावर तंदर है, फिर एक इंद्रिय, अपार दुख है सच में। ये मनुष्य गति के दुख कम नहीं है, ये थोड़े बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ शांति से बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, देर नहीं लगती है। फिर मैं सिर्फ साजेक आ गया, बैठे हैं पड़े हैं, बिस्तर पकड़ लिए, खाट पकड़ लिए, तबीयत खराब हो रही है, कोई संभाल नहीं पा रहा है, वेदना भुगत रहा है, फिर कैसी कैसी दशाएं होती है। मिल गया मनुष्य जन्म तो जैन कुल नहीं मिलेगा, जैन कुल मिल गया तो जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। जिनवाणी सुनने का यदि अवसर मिल गया तो तू विचार कहाँ से लाएगा, परिणाम कहाँ से लाएगा? अवसर कितनों को नहीं है बोलो? आपने कितने लोगों को महेंद्र भाई मेल भेजी होगी, उनमें से अवसर था ना सबको? तो अवसर भी मिल गया ना, चांस भी तो मिल गया, परिणाम कहाँ से लाएगा? जो परिणाम आज हमारे हैं, ये परिणाम कहाँ से आएंगे? अब परिणाम होते हैं तो संयोग नहीं मिलते हैं, संयोग होते हैं तो परिणाम नहीं मिलते हैं, समागम नहीं मिलता है, समागम मिलने के चांस होते हैं तो भाव नहीं लगते हैं, इसके भाव बहुत बनते हैं, चांस नहीं पड़ पा रहे। बड़ा दुर्लभ है ये जो संयोग मिल गया है, अत्यंत दुर्लभ ये संयोग है जो हमारे को मिल गया है। इस लेवल पर हम आ गए हैं कि यहाँ आकर के यदि हमने कल्याण नहीं किया, जैसे पर्वत के शिखर पर चले जाओ आप, चढ़ते 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 बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच गए, अब क्या है? या तो वापस इस साइड या दूसरी साइड जाएंगे तो भी उतरना ही है, गिरावट तो आएगी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अब इससे बढ़िया और दिन नहीं आने वाले। ये समागम मिल गया, ये गुरुदेव का तत्व ज्ञान मिल गया, ये ऐसे महापुरुष ज्ञानी पुरुष मिल गए हमारे को, ज्ञानी पुरुषों का समागम मिल गया, श्रीमद जी जैसे ज्ञानी पुरुष मिल गए, उनका समागम हो गया। समागम माने उनकी वाणी का समागम और उनकी वाणी का मर्म। आप सोचिए आज के 150-200 साल पहले होते तो ये मालूम नहीं था हमारे पास में, 200 साल पहले ये चीज नहीं थी हमारे पास में, कुछ नहीं था, क्या कर लेते बोलो? मनुष्य जन्म जैन कुल और सब कुछ मिल जाता तो भी। ये जो तत्व ज्ञान, ये जो शुद्ध आत्मा की चर्चा जो मिल गई है अभी वर्तमान में, साधारण नहीं है, और हमें मिल गया है तो हमें इसकी कीमत नहीं है, हमें इसका बहुमान नहीं आता है। समझ लो कोड़ियों के भाव रत्न गमा रहा है, ऐसा है, बर्बाद जा रहे हैं, कब्बे उड़ाने के अंदर रत्न फेंक रहा है, ऐसी बर्बादी हो रही है। अंधेरे में बैठा बैठा, पेड़ के नीचे बैठा था नदी किनारे, तो कोई एक पत्थर उनकी पहली हाथ में लग गई और धीरे धीरे एक एक पत्थर नदी में समुद्र में फेंकता रहा। इतनी देर में पीछे से आवाज आई, अरे ओ भैया क्या करते हो, रत्न उठते कभी चली पड़ी थी वहां, ये क्या हुआ? आखिरी रत्न हाथ में बचा, क्या करें? ये क्या कर दिया मैंने तो ये सारे के सारे रत्न मजे मजे में उड़ा दिए, मौज मस्ती में खराब कर दिए मैंने, बर्बाद कर दिए ये तो सब मैंने।
क्या होगा? कैसा विचार कर रहा है बोलो, अब क्या करें, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, जब हमने ये दुर्लभता बतलाई तो इसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। अरे रे, हमने मनुष्य जीवन के बहुत दुर्लभ क्षण बर्बाद कर दिए, हमारा जीवन तो बेकार चला गया, हमने तो बहुत पाप किए हैं, इतना जीवन निकल गया हमारा, अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चिंता मत कर, जो रत्न बचा है ना काम हो जाएगा। बीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, पिछली बातों को भूल जाओ, छोड़ दो, दृष्टि हटाओ वहां से और वर्तमान को संभालो, अपने को संभालो। आप जितना बचा है उसको भी सार्थक कर लेगा। अरे जो रत्न हाथ में बच गया है ना फेंकने से, उसकी भी कीमत समझ ले तो पीढ़ियां निहाल हो जाएगी, कितना बहुमूल्य है। तो क्या सोचता है चला गया, कोई बात नहीं, थोड़ा वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा है, उम्र 70 हो गई, 75 हो गई, अब बहुत चिंता मत कर, घबराए मत, जितना है तेरे पास में टाइम समर्पित कर दे अपने स्वभाव के लिए। नाम पर सारी दुनिया दौड़ती हो, हर व्यक्ति धर्म के नाम पर ऐसा लगता है कि मंदिर में धर्म होगा, क्षेत्र में धर्म होगा, तीर्थ क्षेत्रों पर धर्म होगा, पूजन में धर्म होगा, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, सब छोड़ने में धर्म होगा, और उपवास में धर्म होगा, त्याग करने में धर्म होगा। अरे कहां कहां धर्म की मिथ्या मान्यता बैठी हुई है, इन चीजों में धर्म संभव है क्या? बड़ी पराधीनता है। घर से बाहर किसी क्षेत्र में जाने के लिए धन की पराधीनता, साधन की पराधीनता, शारीरिक पराधीनता, और कोई नहीं जाने दे रहे तो नहीं जाने दे रहे, बोलो, फिर तो हम धर्म कर ही नहीं सकते। हमसे चला नहीं जाता, गाड़ी चलाई नहीं जाती, और कोई ले जाता नहीं है, हम तो पराधीन है, अब हम धर्म नहीं कर सकते, अब हम धर्म के योग्य नहीं बचे। ऐसा है? ऐसा नहीं है। जैन सेंटर में हम नहीं जा पाए तो क्या धर्म नहीं हो पाएगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मोक्ष कहो निज शुद्धता, उसका नाम धर्म है, निज शुद्धता का नाम धर्म है। घर के बाहर कदम रखने की बात नहीं है। कोई व्यक्ति जहाँ पराधीनता क्रिएट करे, नहीं जाऊंगे जी, नहीं जाने देंगे आपको, क्या धर्म धर्म लगा रखा है, खूब कर लिया धर्म, घर में बैठो, क्या करें बोलो, हम घर में हो सकता है कि नहीं? तो वो लाइन याद रखना जो भी थोड़ी देर पहले कही थी, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, कहीं भी रहो, मंदिर जाने से तो रोक सकते हो आप, स्वाध्याय घर में भी तो कर सकते हैं, नहीं करने देंगे स्वाध्याय, किताब छीन ली, अब बोलो अब क्या कर लोगे, अब कैसे करेंगे धर्म? चश्मा छीन लिया, किताब छीन ली, नहीं पढ़ने दे रहे, अब कैसे धर्म कर लेंगे? चिंतन करने से कौन रुकेगा? क्या आप रुके दिए कि चिंतन भी नहीं करोगे? ये हाँ ठीक है, नहीं करूंगा, मैं अंदर चिंतन कर रहा हूँ।
ज्ञान तो मेरा है,
ज्ञान तो मेरा है, निज शुद्धता, अंतरंग शुद्धता, भावों की पवित्रता, चैतन्य स्वभाव का अवलंबन, आंख बंद करके बैठना, लेटे लेटे भी चाहे बैठे हो चाहे लेटे हो, दूसरे को लगता है कि लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और हम अपने स्वभाव में जा रहे हैं। मोक्ष कहो निज शुद्धता, निज शुद्धता की चर्चा जहाँ हो, निज शुद्धता का अवलंबन जहाँ हो, उसका नाम धर्म है, कि पराधीनता नहीं। जहाँ परतंत्रता और पराधीनता होगी वहां धर्म नहीं होगा, धर्म स्वाधीनता का मार्ग है। दुनिया में कहीं ऐसी स्वाधीनता नहीं है जैसी अपने स्वभाव में आने में हो। बोध ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। हाँ भाव में प्राप्ति कठिन है, इस भाव में प्राप्त नहीं कर पाया, थोड़ी सी कठिनता दिख रही है, ये व्यवहार का, इसको व्यवहार कहते हैं। इसलिए धर्म भावना में उन्होंने क्या लिखा, बुधरदास जी ने, देखो आप, याचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। याचना करने से चिंता में रक्त देता है, मांगना पड़े, याचे सुर तरु कल्प वृक्ष देता है, कल्प वृक्ष से मांगना पड़ता है तो मिलता है, और चिंतामणि रत्न से विचार चिंता तो करनी पड़ती है कि ये चीज मिल जाए,
कि धर्म ही ऐसा चिंतामणि और ऐसा कल्प कर हुए कि बिना जांचे और बिना चिंतन किए हुए। ये भिखारियों का धर्म नहीं है, यहाँ भीख मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने स्वभाव को जानो, कुछ नहीं सब काम अपने आप होंगे। आप अपने में आ जाओ, जगत की परवाह मत करो, सब काम अपने आप होंगे, सब ऑटोमेटिक होगी सारी की सारी व्यवस्था, कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। कितने सहजता का मार्ग बतला दिया, क्या कह दिया, जांचे सुर करु कल्प वृक्ष देय सुख सामग्री देता है, चिंतत चिंता रेन, रेन मतलब रत्न, चिंतामणि रत्न चिंता करने से देता है। और लेकिन धर्म कैसा है, बिन जांचे बिन चिंतय, बिना याचना किए हुए, बिना चिंता किए हुए, बिना चिंतन किए हुए, धर्म सकल सुख देन, धर्म पूर्ण सुख को और सकल सुख को देने वाला है। इसलिए यहाँ कह दिया असली आपका रक्षक धर्म ही है, चिर रक्षक। आज तक यदि किसी की रक्षा हुई है तो धर्म से ही हुई है, और हम भावना ये बाते हैं कि ये धर्म ही हमारा चिर साथी बन जाए सदा काल के लिए, हम कभी धर्म का साथ न छोड़े। दुनिया का साथ छूटे तो छूटे, संपत्ति छूटे तो छूटे, चाहे चक्रवर्तित्व पद ना मिले, चाहे भारी सामग्री छूट जाए, परिवार छूट जाए, चला जाए, मित्र साथ छोड़ देवे, लेकिन फिर भी ये धर्म न छूटे। चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का योग मुझे बने, चाहे दुश्मन आके घेरे, लोक सारा हिल उठे, तो भी मैं जिन धर्म को एक क्षण भी छोड़ू नहीं, प्रतिकूलता अरे कितनी रहे, निज रमण का छोड़ू नहीं, निज रमण का छोड़ू नहीं। ये भावना भाते हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, स्वभाव की रमण का, जग में न हमारा कोई था न कोई है, जग में न हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। जब जग में हमारा कोई था ही नहीं तो हम जग के साथी क्या बने, जगत से दृष्टि हटाएं, अपने में दृष्टि लगाएं और अपने में अपनापन करके परिपूर्ण सुख की प्राप्ति करें, परमानेंट सुख की प्राप्ति करें, मुक्ति की प्राप्ति करें। इस तरह से बारह भावनाओं का चिंतन है कि हमारे को विकार से ले जाकर वैराग्य उत्पन्न करता हुआ स्वभाव में स्थिर कराकर कर्म मुक्ति प्रदान करा देने वाला चिंतन है। चिंतन बदलना चाहिए, ये बारह भावनाएं पाठ करने के लिए नहीं है, चिंतन करने के लिए है। निरंतर गुनगुनाओ, निरंतर चिंतन करो, स्वरूप का चिंतन करो, चिंतन से ही रस निकलेगा, सुनने से नहीं, चिंतन करो, जो सुना है उसका निरंतर चिंतन करें, निरंतर अभ्यास करें, आत्म कल्याण करें, सच्चे सुख की प्राप्ति करें, मुक्ति की प्राप्ति करें और वर्तमान जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करें, इसी भावना से बात करें।
पंडित जी आपने जो हमें बारह भावना सुनाई तो हम पूरा यहाँ जो अपना परिवार है और भाई उसकी तरफ से हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद मानते हैं।
धन्यवाद आपका, इस दुर्लभ समय में आपने समय निकाला और यहाँ आकर के बैठे, न मालूम क्या क्या काम करते आप लोग, लेकिन ये जो सुनने के लिए आपने समय निकाला है, वास्तव में सब धन्यवाद साधु आज के पास है।
स्वरूप समझा बिना पायो रूप समझायो से पद नमो श्री सर्व भगवन परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान
वरते देहाति शरणमा वंदन गणी
समर्पित कर दे गुरु के।